अगली सुबह राठौड़ हवेली। हल्की हल्की धूप खिड़की की झलोखों से अंदर आ रही थी। हवेली का माहौल बाहर से शांत था, लेकिन अंदर हर किसी के मन में हलचल चल रही थी। विश्वनाथ धीमे कदमों से अपनी मां रत्ना देवी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में अब भी वही सख्ती और ठान लिया हुआ फैसला था। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर रत्ना देवी बिस्तर पर बैठी थी। उनके सामने छोटी सी दवाई की शीशी और मरहम रखा था। वो अपने पैर पर धीरे धीरे दवाई लगा रही थी। चेहरे पर हल्का दर्द साफ झलक रहा था। विश्वनाथ ने दरवाजा और खोला। मां, उसकी आवाज सुनते ही रत्ना देवी ने सिर उठाया। आ गए विशु। उनकी आवाज में हमेशा वाली ममता थी, लेकिन हल्की थकान भी। विश्वनाथ बिना कुछ कहे उनके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से उनके हाथ से दवाई ली। मैं कर देता हूं। रत्ना देवी हल्का सा मुस्कुराई। अरे नहीं बेटा, रहने दे। लेकिन इस बार विश्वनाथ नहीं रुका। उसने बहुत संभाल कर उनके पैर पर दवाई लगानी शुरू कर दी। उसका स्पर्श सख्त नहीं, बल्कि बहुत नरम था। फिर धीरे धीरे उसने उनका पैर अपने हाथों में लिया और हल्के हल्के दबाने लगा। रत्ना देवी उसे देखती रहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और अपनापन भर आया। बेटा विशु, उन्होंने धीरे से कहा, ये सब मत किया कर। विश्वनाथ ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। क्यों मां? तू अब बड़ा आदमी बन चुका है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लोग क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगता ये सब। विश्वनाथ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मां, उसने बहुत सादगी से कहा, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, रहता तो अपनी मां का ही बेटा है। बस ये सुनते ही रत्ना देवी की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। खुश रह तू। फिर उन्होंने उसे अपने पास बैठा लिया। विश्वनाथ ने धीरे से अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया, जैसे एक पल के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहता हो। कमरे में एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। कुछ सेकंड बाद विश्वनाथ की आवाज आई, धीमी लेकिन सीधी। मां, आपने उस दिन झूठ क्यों कहा था? रत्ना देवी का चेहरा एक पल के लिए ठिठक गया। उनकी उंगलियां हल्की सी सख्त हो गईं। उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, उन्होंने धीरे धीरे कहा, मुझे भी पूरा सच नहीं पता था। विश्वनाथ ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। क्या मतलब? मुझे बस आधी बात मालूम थी, उन्होंने नजरें झुका ली, और मैंने उसी अधूरी बात पर फैसला ले लिया। कमरे में फिर से भारीपन घुल गया। हां, उन्होंने खुद ही मान लिया, गलती हुई मुझसे भी। विश्वनाथ कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी समझ थी। तो उसने धीरे से कहा, अब उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? विश्वनाथ अब सीधा बैठ गया। उसकी आवाज अब पूरी तरह ठोस थी। हम शामली को वापस लाएंगे। कमरे में जैसे एकदम से सब थम गया। रत्ना देवी की आंखें फैल गईं। क्या? उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अक्षरा से तेरी सगाई हो चुकी है, पूरी दुनिया जानती है। उनकी आवाज में चिंता साफ थी। अगर अब सब कुछ बदल दिया तो बदनामी होगी बेटा, लोग बातें बनाएंगे, तेरे बिजनेस पर असर पड़ेगा, राठौर नाम पर सवाल उठेंगे, हर शब्द के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन विश्वनाथ इस बार बिल्कुल नहीं डिगा। देखा जाएगा, उसने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। रत्ना देवी उसे घूरती रह गईं। तू समझ नहीं रहा है विशु। मैं सब समझ रहा हूं मां, उसने बीच में ही रोक दिया। लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूं कि जो गलत हुआ है उसे सही करना जरूरी है। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई। और अगर उसके लिए मुझे सबके सामने खड़ा होना पड़े तो मैं हो जाऊंगा। कमरे में फिर खामोशी छा गई। रत्ना देवी अब उसे नए नजरिए से देख रही थी। उनका बेटा जो हमेशा फैसले लेता था, लेकिन आज वो पहली बार एक रिश्ते के लिए लड़ने को तैयार था। तुमने श्यामली से बात की? उन्होंने धीरे से पूछा। विश्वनाथ कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में रात की बात घूम गई। श्यामली की टूटी हुई आवाज, उसका गुस्सा, उसका दर्द। उसने नजरें हटा ली। वो सब बाद में, उसने टालते हुए कहा। अभी हमें तैयार रहना होगा। रत्ना देवी ने उसकी इस चुप्पी को नोटिस किया। मतलब वो मान नहीं रही। उन्होंने सीधे पूछ लिया। विश्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी उंगलियां आपस में कस गईं। यही खामोशी सब कुछ बता गई। रत्ना देवी ने गहरी सांस ली। विशु, उन्होंने थोड़ा नरमी से कहा, रिश्ते सिर्फ जिद से नहीं चलते। अगर वो खुद नहीं आना चाहती तो उसे जबरदस्ती लाना सही नहीं होगा। विश्वनाथ ने उनकी तरफ देखा। वो आएगी, उसने धीमे लेकिन यकीन से कहा। बस उसे यकीन दिलाना होगा कि इस बार सब सच होगा। रत्ना देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी चिंता थी। तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। दोनों का ध्यान उधर गया, लेकिन दरवाजा बंद था। शायद कोई था या फिर सिर्फ वहम। उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के ठीक बाहर दीवार के साए में खड़ी अक्षरा सब कुछ सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक खामोश मुस्कान थी, लेकिन आंखों में खतरनाक सन्नाटा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंध गईं। तो ये खेल चल रहा है, उसने मन ही मन कहा। श्यामली को वापस लाने का प्लान। उसकी आंखों में अब जलन साफ दिख रही थी। इतनी आसानी से? उसके होंठ हल्के से टेढ़े हुए। नहीं विश्वनाथ, इतना आसान नहीं होगा ये सब। वो धीरे धीरे पीछे हटी। उसके दिमाग में अब तेजी से प्लान बन रहा था। अगर तुम चाल चलोगे तो मैं खेल ही बदल दूंगी। उसकी नजरें एक पल के लिए अपनी उंगली पर गईं, जहां वो रिंग होनी चाहिए थी, जो अब गायब थी। और तभी उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। शायद वो रिंग ही सब कुछ बदल दे। वो मुड़ी और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे कमरे में विश्वनाथ और रत्ना देवी अब भी अनजान थे कि उनके फैसले ने एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले वाली थी।